अच्छा साहब, आज मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, सुनिए। देखिए हदीस में आता है, वो हदीस में आता है कि रसूल हिकमत मुखाफतुल्लाह, रसूल हिकमत मुखाफतुल्लाह, इसका मतलब है कि Fear of God is the source of wisdom. Fear of God is the source of wisdom. Rasul Hikmat Mukhafatullah. In the Quran mein bhi ye cheez hai, dusre word mein. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Usi baat ko hadith mein se kaha gaya hai ki Rasul Hikmat Mukhafatullah. The fear of God is the source of wisdom. ये जो है आज तक कोई उसको क्लियर नहीं कर सका। ये हदीस की किताबों में लिखा रहता है, आप कमेंट्री पढ़े कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कैसे विजडम जो है वो खुदा के दर से क्या उसका तल्लुक है? ये विजडम आप सोचिए, विजडम जो है वो कैसे जुड़ी हुई है, ये बहुत ही ज्यादा सोचने की बात है कि विजडम और खुदा का डर ये कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रसूल हिकमत मुखाफतुल्लाह, फियर ऑफ गॉड इज द सोर्स ऑफ विजडम, ये मैंने पहली बार हिस्ट्री में इसको डिस्कवर किया। कोई नहीं जानता इसका मतलब क्या है। देखिए मैं बताता हूं आपको, विजडम जो है उससे क्यों सारे लोग, अब जिसको भी देखे विजडम नहीं पाएंगे, उसके अंदर विजडम की बात नहीं करेगा, बेकार बेकार बातें करेगा। तो खास तौर पर जो वाइज एनालिसिस है चीजों का, चीजों को वाइजली एनालिसिस करना, ये बिल्कुल है नहीं लोगों के अंदर। तो फियर ऑफ गॉड है वो क्या करता है, वो आदमी को कटुसाइज बनाता है। फियर ऑफ गॉड यानी ये खुदा जो ऑल पावरफुल है, जो ऑल नोइंग है, जिसके सामने मैं अकाउंटेबल हूं, ये चीज आदमी को क्या करती है, कटुसाइज बनाती है। कटुसाइज का मतलब क्या है? कटुसाइज का मतलब यह है कि जितना जी यानी जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है वो खत्म हो जाती है। जैसे आप देखिए बलून जो होता है, बलून जो है बहुत बड़ा दिखाई देता है, हैं? और उसकी हवा निकाल लीजिए, एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल वो था उसके अंदर, उसका जो साइज जो बढ़ा हुआ है, पर वो आर्टिफिशियल था, वो जरा सा भी कैसे उसमें होल कर दिए हवा निकल जाती है। तो ये फिर अब गॉड क्या करता है, उन सारी चीजों को आदमी के माइंड से निकाल देता है जो उसको आर्टिफिशियल थिंक की तरफ ले जाते हैं, डिजायर है। डिजायर क्या होता है, आदमी अनरियलिस्टिक अप्रोच बन जाता है उसका। डिजायर जब छाती है आदमी के ऊपर, अनरियलिस्टिक अप्रोच बन जाता है। अब डिजायर कोई ऐसा फॉर्मूला डिजायर को दबाने वाला हो, डिजायर कंट्रोल करने वाला हो, तो कितना ज्यादा वाइज आदमी बन जाएगा वो, क्योंकि उसका रियलिस्टिक अप्रोच आ जाएगा। इस तरीके से देखिए हेट है, हेट आदमी को क्या करती है, हेट ये कहती है कि आदमी को अपने को बड़ा दूसरे को छोटा दिखाती है, अपने को सही दूसरे को गलत दिखाती है। हेट का मतलब क्या है, हेट का मतलब है कि आप दूसरे को रॉन्ग समझे, अपने को राइट समझे। तभी तो हेट आता है, ये तो हेट क्यों आएगा? एंगर है, एंगर इसीलिए आता है कि गलती दूसरे की, मेरी गलती नहीं है। एक दूसरे को गलत समझना, इसी से एंगर आता है। तो इस माने कि राइट थिंकिंग में रुकावट है, एंगर या हेट, नेगेटिव थॉट, ये राइट थिंकिंग में रुकावट है। रिवेंज, हेट, एंगर, मैलिस, जितने भी नेगेटिव थॉट हैं, वो राइट थिंकिंग में रुकावट है। राइट थिंकिंग में रुकावट है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कुछ महीने पहले मऊ में राइट हो गया, हिंदुओं ने मुसलमानों को बहुत मारा पीटा। अब सारे मुस्लिम प्रेस में छपा क्या, हिंदुओं का जुल्म, हिंदुओं का जुल्म ही है वो। सब के सब बस उसी को बुरा भला कह रहे हैं। अच्छा, हमने इसकी बाकायदा इसको पता किया तो हमारे एक आदमी है वहां पर, पढ़े लिखे आदमी है, उसकी टेलीफोन बात हुई, जो वहां पर वहीं पर है, वहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने किस्सा बताया, हमको मीडिया से नहीं पता चला था, सो कॉल मुस्लिम मीडिया जो है वो चीजों को छुपाए हुए था। सिर्फ ये पता था कि हिंदुओं ने इतना घर जलाया, हिंदुओं ने इतने मुसलमानों को मारा, हिंदुओं ने मुसलमानों की फैक्ट्री तोड़फोड़ तोड़ डाली। बस जितने मुस्लिम पेपर्स थे वो सब ये बताते थे। उन्होंने बताया कि मैं यही हूं, यही देखा हूं सबको अपनी आंख से। हुआ ये, जिस दिन रात हुआ था तो ये था, अभी जो रोजे का महीना था ना, रोजे के महीने की बात है ये, रोजे की तीसरी तेरा रोजा था। तो क्या था, लोग मस्जिद में एक मस्जिद में वहां पर थे तरावी पढ़ने के लिए। तो तरावी पढ़ने की तरह तरावी मशा होता है कि हर दो रकत, दो यूनिट के बाद बैठते हैं लोग, 20 रकत नमाज पढ़ते हैं, बीच में दो दो यूनिट के बाद बैठते हैं, ऐसा होता है तरावी। दो रकत पढ़ करके बैठे, दो यूनिट, तो पास में वहां पर एक मंदिर था हिंदुओं का, वहां से भजन की आवाज आने लगी, भजन कीर्तन लॉर्ड जी का। अब मुसलमानों क्या हुआ कि हम डिस्टर्ब कर रहा है, कोई नमाज को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे तरावी को डिस्टर्ब कर रहा है, बस इमोशन में आ गए। और कुछ नौजवान लड़के जो तरावी पढ़ने आए थे वहां, गुस्से में निकले, कौन है जो हमारे नमाज डिस्टर्ब कर रहा है? अब गए मंदिर में, इसका बंद करो लॉर्ड स्पीकर, हमारी नमाज जो गड़बड़ हो रही, हम क्यों बंद करें? हमने तो कलेक्टर से इसका परमिशन ले लिया है, अब आप कौन होते बंद करने वाले? कलेक्टर ने दे दिया परमिशन, जो कहते हैं जिला प्रशासन, हिंदी में जो कहते हैं जिला प्रशासन, तो आप कौन होते बंद करने वाले? बस वो गुस्से में थे, क्या क्या उन्होंने लाउड स्पीकर तोड़ फेंक दिया। हम बताइए कि जब हिंदुओं का एक रिलीजियस फंक्शन हो रहा हो मंदिर में, और वहां पर वो भजन कीर्तन, वो उनके लिए पूजा है, वो अगर मुसलमानों के नजदीक इबादत है तरावी, उनके नजदीक भजन कीर्तन इबादत है, तमाशा नहीं उनके यहाँ, वो भी पूजा और इबादत है हिंदुओं के यहाँ। तो इन्होंने क्या किया, अपने पूजा को भंग न हो इसके नाम पर दूसरे की पूजा को भंग कर दिया। जाहिर है कि बहुत गुस्सा हो गए, बड़े कुछ से, अब वो है मेजोरिटी में, हिंदू मेजोरिटी में, पैसे भी आ गए हैं मुसलमानों से। अब उन्होंने जो राइट किया, खूब खूब मारा पीटा मुसलमानों को, जलाया फूंका सब किया। अब देखिए वो जो पार्ट है मऊ के राइट के, दो पार्ट, एक मुसलमानों का हिंदुओं के भजन को भजन और कीर्तन को यानी भंग करना, तो तोड़ फोड़ करना। दूसरा यह कि हिंदुओं का मुसलमानों को मारना, दो पार्ट। तो अगर पहले पार्ट को छोड़ दिया जाए, सिर्फ सेकंड पार्ट को लिया जाए तो क्या होगा, आपको लगेगा कि हिंदुओं ने जो बड़े खराब है और हिंदू जुल्म के मुसलमानों के ऊपर एक्ट ऑफ एट्रोसिटी दिखाई देगा। लेकिन अगर पहले पार्ट को ले लें तो क्या दिखाई देगा, इट वॉज रिटेलिएशन फ्रॉम हिंदू। एक शक्ल में उसमें हिंदू जुल्म दिखाई देगा आपको, दूसरी शक्ल में उसको मुसलमानों की बेवकूफी का रिजल्ट दिखाई देगा। इसको समझिए अच्छी तरीके से कि सिर्फ सेकंड पार्ट को जो हुआ हिस्टोरिक, सिर्फ सेकंड पार्ट को आप देखें, लगा कि हिंदू जो बड़े खराब है, हिंदू जालिम है। लेकिन फर्स्ट पार्ट को इंक्लूड करके अगर देखें, लगा कि मुसलमानों ने एक बहुत ही स्टूपिड काम किया, उस स्टूपिड काम का उन्हें प्राइज देनी पड़ी, ये लगेगा। तो यहां पर फियर ऑफ गॉड क्या करता है, फियर ऑफ गॉड ये कहता है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो खुदा से पकड़े जाओगे, अकाउंटेबिलिटी जो है आपको रोकती है झूठ बोलने से। झूठ मतलब क्या, जस्टिस के खिलाफ बोलने से। तो आप ये कहते हैं कि हिंदुओं जुल्म का, हिंदुओं जुल्म का, हिंदुओं जुल्म का, तो ये जस्टिस के खिलाफ होता है। और कुरान में है कि जस्टिस के खिलाफ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, तो पनिशमेंट देगा खुदा। तो अकाउंट में अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, आपको जस्टिस पर रोकता है। आपको जस्टिस रोकने का मतलब क्या हुआ, आपके अंदर राइट थिंकिंग आएगी, राइट स्पीकिंग आएगी, राइट एनालिसिस आएगा। अब ये कितना बड़ा रोल है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी का। फियर ऑफ गॉड का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। फियर ऑफ गॉड का मतलब है कि जैसे कोई शेर से डरता है या उल्फ से डरता है, नहीं। फियर ऑफ गॉड मीन्स I am accountable to God, ये मतलब है। तो आप इस स्टोरी में आप देख सकते हैं कि अगर हम खुदा से डरते हों, अपने आप को खुदा के लिए अकाउंटेबल समझते हों, इन अदर वर्ड्स हम समझते हों कि जैसा कुरान में है कि दो एंजल बैठे हुए हर एक आदमी के कंधे पर, शोल्डर पर, आदमी के दोनों शोल्डर पर दो एंजल बैठे हुए हैं, और वो हर सेकंड हर मिनट हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और खुदा के जो खुदा की डिवाइन कोर्ट जो बैठेगी इन हिराफ्टर में, तो वो वहां पर उनका रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आदमी के अंदर जिंदा है, उसका माइंड जो है इसको पकड़े हुए है, क्या होगा, वो डरेगा इससे कि मैं कोई अनजस्ट बात कहूं, वो चाहेगा कि बस ठीक ठीक बात कहूं ताकि खुदा का पकड़ न जाऊं। इसी का नाम तो राइट थिंकिंग है, इसी का नाम राइट एनालिसिस है, इसी का नाम राइट स्पीकिंग है। तो यही वो चीज है कि हदीस में जो कहा कि फियर ऑफ गॉड इज द सोर्स ऑफ विजडम। अगर आप अपने को समझते हो कि मुझे खुदा क्या पूछा जाएगा, तो कभी भी आप जस्टिस के खिलाफ बोलेंगे नहीं, इंसाफ की बात बोलेंगे। तो गया के फियर ऑफ गॉड जुड़ा हुआ है राइट थिंकिंग से। کتنا بڑا رول ہے فیئر آف گاڈ کا. رائٹ تھنکنگ سب بڑی چیز ہے. رائٹ تھنکنگ کا نام تو وزڈم ہے. اب میں آپ کو ایک بہت ریلیونٹ ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں دلی میں ایک تھے پروفیسر مجیب, اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. جامعہ ملیہ جہاں کا ہے نا, جامعہ ملیہ میں پروفیسر تھے وہ, ہسٹری کے ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کے پروفیسر تھے وہ. بہت لنڈڈ آدمی سمجھاتے تھے پروفیسر مجیب. تو بہت پہلے جب میں دلی ابھی نہیں آیا تھا, مطلب یہاں رہنے نہیں لگا تھا, ایسے آیا تھا, تو اسے ملاقات ہوئی پروفیسر مجیب سے. تو انہوں نے بہت ہی یعنی ہیٹ فل انداز میں کہا کہ مولانا صاحب آپ جانتے ہیں کہ آج اسلامک لرننگ جو ہے ہندو خاص اسلامک لرننگ جو ہے وہ چلی گئے یہودیوں کے ہاتھ میں. اسلام کا جو علم ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ چلا گیا. کیوں؟ ان کا کہ جو بکس لکھی ہیں یہودیوں نے وہی یونیورسٹیوں میں پڑھا جاتی ہیں. اسلام کی سٹڈیز میں یونیورسٹیوں میں جو اسلام کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں بک پڑھائی جاتی ہے یہودیوں کی, اور یہودی ہمیشہ اسلام کو ڈسٹارٹڈ وے میں پیش کرتے ہیں. اسلام کا ڈسٹارٹڈ پکچر پیش کرتے ہیں. تو گویا کہ وہ لوگ, وہ جیش اسکالرز جو انٹینشنلی اسلام کا ڈسٹارٹڈ پکچر پیش کرتے ہیں وہی اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس زمانے میں. اب کتنی شاکنگ بات ہوئی, یہ بات بہت پہلے کی ہے, میرا تو شاید 40 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو. تو اب ہمیں یاد آیا مسلمانوں کا یہودی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے اورینٹلسٹ, یہ سب ویسٹرنرز ہوتے ہیں. یہودی ویسٹرنرز ہوتے ہیں. تو ویسٹرنر یعنی ویسٹ کے جو اسکالرس ہیں وہ جنہوں نے لکھی ہیں کتابیں یعنی اسلام پر یا ایشین ایشوز پر, ان کو کہتے ہیں اورینٹلسٹ. اس کو کہتے ہیں اورینٹلزم. اورینٹلزم مینس ویسٹرن اسکالر جو ہے وہ ایشیائی سبجیکٹ پر پڑھے اور لکھے, یہ اورینٹلزم. تو اس کو کہتے ہیں اورینٹلسٹ. یعنی ہے ویسٹرنر, وہ اسلام کی اسٹڈی کر کے اسلام بک لکھتا ہے. اس زمانے میں ساری مسلم دنیا میں ان کو کہتے اورینٹلسٹ کو کہتے ہیں مستشرق اردو میں یا عربی میں. مستشرق عربک میں یا اردو میں یا پرشین میں مستشرق. تو اس زمانے میں ساری مسلم دنیا میں مستشرق کے خلاف بہت ہی وہ تھا نفرت, ہیٹ, کہ بڑے خراب لوگ ہیں. جیسے آپ نے کتاب پڑھی تھی اس زمانے میں, ایک عربی کتاب ہوگی تھی الاسلام والمستشرقون, یہ عربی کتاب ہے الاسلام والمستشرقون موٹی سی, یعنی اسلام اینڈ اورینٹلسٹس. اسلام اینڈ اورینٹلسٹس اس میں دکھایا تھا کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں, یہ کانسپریسی کرتے ہیں, اور یہ لوگ اسلام کے خلاف لکھتے بولتے ہیں. کب بالکل ڈپکٹ کیا تھا ان کو اسلام کے اینیمی کے جیسے. اس کو پڑھ کے ظاہر ہے کہ لوگوں کا تو ہیٹ آیا کہ بڑے خراب لوگ ہیں, بہت برے لوگ ہی ہیں. ایسے خود ہمارے اعظم گڑھ میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی سیمینار انجینوں پر, یعنی مستشرقین کے اوپر. اعظم گڑھ میں ایک انسٹیٹیوشن ہے کا نام ہے دار المصنفین, ایمان شبلی نعمانی نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا. تو وہاں پر کانفرنس ہوئی تھی استشراق اور مستشرقون پر, یعنی اورینٹلزم اینڈ اورینٹلسٹ. تو وہاں بڑے بڑے لوگ آئے تھے, جیسے مولانا ابوالحسن ندوی جن کی ڈیتھ ہو چکی, وہ بھی آئے تھے وہاں, اور بڑے بڑے ٹاپ کے لوگ آئے تھے. اس کی بک چھپی تھی وہاں, جو پیپر پڑھے گئے تھے وہ سارے ہمارے پاس ہیں یہاں پر. تو کئی ولیوم میں اس کی چھپا تھا, اس کا اتنے سارے پیپرز تھے وہ. اور سارے پیپر جو تھے کیا تھا, یہ تھا کہ بڑے خراب لوگ ہیں, بہت برے لوگ ہیں, بہت گندے لوگ ہیں, بہت انمی ہیں اسلام کے, اسلام کے پیچھے خراب کرتے ہیں. پھر وہاں کیا ہوئے کہ اورینٹلسٹ کا جو سبجیکٹ ہے اس سے لوگوں نے کیا لیا, ہیٹ. سارے مسلم ورلڈ میں, سارے مسلم ورلڈ میں اس سے ہیٹ کی خوراک ملی ان کو. سارے ایک بھی آدمی نہیں ملے گا جو اس میں ایکسپشن ہو. تو یہ دو ریفرنس میں نے دیے کہ وہ عربک بک الاستشراق والمستشرقون اور آدم گڑھ میں ہونے والا سیمینار مستشرقین پر. اس طرح کے بہت زیادہ آرٹیکل اور بکس اور سیمینار اور جلسے, لیکن سب کا جو ہے جس کا ہے یہ بڑے خراب لوگ ہیں, یہ کانسپریسی کرتے ہیں. تو انہوں نے صرف ہیٹ مسلمانوں کو ہیٹ دیا, ان کے خلاف ہیٹ دیا. اب دیکھیں میں اللہ کے فضل سے جو بھی بولتا ہوں سوچتا ہوں کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں اس کے خدا کے آگے. پوری زندگی میری ایسی ہے کہ میں ایسا کچھ بھی بولوں بک بک ایسا میں نہیں کر سکتا. میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں بک بک کروں بلا سبز. قرآن میں ہے کہ اولا یجرمن لکم شنان قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اس کا مطلب ہے کہ کوئی تم کو اپنا دشمن دکھائی دے تب بھی جسٹس کرو اس کے ساتھ, وہ بولو بات جو صحیح ہے. دشمن دکھائی دے تب بھی تم کو جسٹس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ کوئی بائی برتھ برائی مزاج ہے. میں افورڈ نہیں کر سکتا انجسٹ کلام کو. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ میرے اندر انٹروبن ہے. فیئر آف گاڈ, اکاؤنٹیبلٹی, یہ سب میرے اندر جیسے کہ میرے خون میں شامل ہیں. یہ جو پریزیڈنٹ پاکستان کے ہیں جنرل مشرف نے ایک تقریر کی تھی, اس میں کہا تھا کہ کاشمیر رنس ان اور فلیش اینڈ بلڈ, کاشمیر رنس ان اور بلڈ, کہ کاشمیر جو ہے وہ ہمارے خون میں دوڑتا ہے. کاشمیر ایشو رنس ان اور بلڈ, ایسا کچھ کہا تھا. تو میں بارے میں کہوں گا کہ فیئر آف گاڈ رنس ان مائی بلڈ, اکاؤنٹیبلٹی رنس ان مائی بلڈ, میرے خون میں دوڑتا ہے وہ. So I cannot afford to go against the justice. وہی کہوں گا جو صحیح بات. تو یہاں پر دیکھیں میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کانسیپٹ نے مجھ کو میرے اندر رائٹ تھنکنگ پیدا کی. رائٹ تھنکنگ, اور رائٹ تھنکنگ مجھے بہت بڑے فائدے ہوئے, بہت زیادہ بڑے بڑے, نہیں ایسے بڑے فائدے پوری ہسٹری میں کسی کو نہیں ہوئے تھے, وہ بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں جب پروفیسر مجیب نے یہ کہا کہ اس زمانے میں اسلام کی ترجمانی کا کام یہودیوں نے لے لیا ہے, یعنی اسلام کو ایکسپلین کرنا, اسلام پر بک لکھنا, ایسی کتابیں جو یونیورسٹی میں پڑھائی جائیں ये जो काम है यहूदियों के चार्ज में आ गया है, और यहूदी इस्लाम के डिस्टॉर्टेड पिक्चर पेश करते हैं। अब मैंने इसको स्टडी की, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि किसी के खिलाफ खामखाह नफरत रख लूं अपने दिल में, बस दफल वाली बोले बोलना शुरू कर दी। सारे मुसलमान करते हैं, वन टू आर सारे मुसलमान ही करते हैं, यहां से लेकर यूरोप अमेरिका अरब जहां भी जाइए आप, बस नफरत की बोली लोग बोलेंगे। तो उन्हें राइट थिंकिंग जो है उन्हें हासिल नहीं, क्योंकि देखिए हेट और राइट थिंकिंग दोनों एक साथ जब बनी सकती है, जिस दिल में हेट होगा राइट थिंकिंग वहां से निकल जाएगी, और जिस दिल में राइट थिंकिंग होगी वहां से हेट निकल जाएगी। ये नेचर है, ये लॉ ऑफ नेचर, ये लॉ ऑफ नेचर है कि हेट और राइट थिंकिंग दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक आएगा दूसरा जाएगा। हेट आई तो राइट थिंकिंग गई, राइट थिंकिंग आई तो हेट चली गई। अब मैं बताता हूं आपको, जब मैंने ये सब पढ़ना शुरू किया तो एक किताब जिसको मुसलमान बहुत बुरा भला कहते थे वो मैंने पढ़ी, वो हिस्ट्री की बुक थी इंडिया के बारे में, एक अंग्रेज की लिखी हुई, एक ब्रिटिश स्कॉलर की लिखी हुई किताब। उसमें मैंने देखा कि दो चैप्टर एक ब्रिटिश के राज के बारे में और एक मुगल राज के बारे में, ये इंडिया में पहले मुगल आए इन राज किया इन्होंने, फिर ब्रिटिश आए उन्होंने राज किया, दोनों का अलग अलग चैप्टर था। तो उसमें क्या था, मुगल पीरियड को जहां लिखना था उन्हें, तो उसका टाइटल बनाया उन्होंने उसका कैप्शन के ये था कि उसमें था कि इन्वेजन ऑफ मुगल्स, इन्वेजन ऑफ मुगल्स, मुगल का इंडिया पर हमला, मुगल का इंडिया पर अटैक, इन्वेजन ऑफ मुगल्स। अच्छा जब ब्रिटिश का आया क्या कहा, तो एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, यहां एडवेंट, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, वहां पर इन्वेजन। बहुत मुसलमान जो जो मुसलमान जो इंग्लिश जानते हैं बहुत गुस्सा है इसमें कि देखो मुसलमान जब आता है यहां तो उसको कहते हैं इन्वेजर, इन्वेडर, इन्वेडर कहते हैं, हमला बताते हैं, उर्दू में कहते हैं हमला आवर, इन्वेडर का मतलब हमला आवर। और जब ब्रिटिशर को बताते हैं तो कहते हैं कि एडवेंट, उर्दू में कहते हैं इसको जहूर, यानी ब्रिटिशर का जहूर, उनका एडवेंट, वहां पर कहते हैं हमला, यहाँ कहते हैं जहूर। अब मुसलमान जो अंग्रेज जानते हैं जिन्होंने पढ़ी किताब है बहुत गुस्सा, तो गुस्सा होकर क्या हुआ, उन्हें कोई पॉजिटिव चीज नहीं मिली अपनी स्टडी से, कोई अच्छी बात नहीं मिली उन्हें अपनी स्टडी से, कुछ भी नहीं पढ़ा, और उन्होंने फिर भी नहीं पढ़ा, पढ़ करके उन्होंने उससे कोई लेसन नहीं लिया, कोई उनको उससे कोई खुराक नहीं मिली, कोई फायदा नहीं मिला उनको। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने वो किताब पढ़ी, तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने तो खुदा की फजल से अकाउंटेबिलिटी का बहुत जबरदस्त एहसास रहता है वो, और मैं यानी फियर ऑफ गॉड की वजह से मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं यानी कोई बेइंसाफी की बात कहूं। अब मैं सोचना शुरू किया इस पर इन्वेजन ऑफ मुगल्स, तो मैंने कहा कि ये तो सच है, गलती क्या है, गुस्सा होने क्या बात है। मैंने इस पर जब एनालिसिस किया इसका, तो मेरे माइंड ने कहा कि بزنس کیس جو بھی ہو, جو بھی لکھا اس کے بارے میں, لیکن مغل کیس ہے وہ تو سچ مجھے انویٹر سے بولو. بابر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ بابر جو ہے افغانستان میں پیدا ہوا, فرغانہ کا رہنے والا تھا, انڈیا کے باہر کا, اور وہاں سے وہ آرمی لے کر آیا انڈیا پر, انویٹ کیا, انڈیا پر حملہ کیا. تو حملہ وہ تو تھا ہی, وہ انویٹر تو تھا ہی. وہ تو جو لکھا ہے اس نے صحیح لکھا ہے. اگر اس نے برٹشر کو نہیں لکھا ہے انویٹر, تو یہ اس کا کام ہے, اس نے لکھا ہی نہیں لکھا وہ جانے. لیکن جہاں تک مغلوں کی بات ہے تو اس نے صحیح لکھا ہے, وہ انویٹر تھے. اب جب میں یہ سوچا تو پھر میں سوچا کہ پھر صحیح بات اسلام کے لحاظ سے کیا ہے. تو میں سوچا کہ میں یہ کہوں کہ مغلوں کو یہ رائٹ تھا کہ وہ انڈیا میں دائی بن کر آئیں, ٹیچر بن کر آئیں, پیسفل میسج لے کر آئیں اسلام کا. اس پر کسی کو آپتی نہیں ہو سکتی تھی, کسی کو آبجیکشن نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ انسان کا یہ رائٹ سمجھا جاتا ہے کہ وہ فریڈم جو ہے انسان کا رائٹ ہے. آج بھی کانسٹیٹیوشن جو ہمارے انڈیا کے لکھا ہوا ہے کہ انڈیا میں ریلیجس فریڈم کمپلیٹ سینس میں ہے. ریلیجن کی فریڈم اتنی زیادہ ہے کہ آپ جس ریلیجن کو چاہے بولیں, جس ریلیجن کا اڈاپٹ کریں, یہاں تک جس ریلیجن چاہے پریس کریں, یہ سب آپ کا رائٹ ہے. تو میں نے کہا کہ اگر بابر انڈیا میں اسلام کا پیسفل میسج لے کر آتا تو وہ اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کر رہا ہوتا, انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ رائٹ. یہ انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ رائٹ ہے کہ آدمی جس چیز کو سچائی سمجھے اس کو پلیز کرے. لیکن جب اسے انویٹ کیا, آرمی لے کر گھس گیا, یہاں اسے انٹرنیشنلی ایک ایسی چیز کی جو ٹیبو ہے, پورا انٹرنیشن جو مائنڈ ہے, جو انٹرنیشنل نارم ہے, جو انٹرنیشنل کسٹم ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ تم کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ تم کسی دوسری کنٹری پر, یعنی وہ ملٹری لے کر گھس جاؤ, وہاں جا کر اکوپائی کر لو. اب دیکھیں جہاں پر آپ کمپیئر کیجئے کہ ملٹری لے کر کے انویٹ کرنا کسی کنٹری میں, یہ انٹرنیشنلی غلط ہے, انٹرنیشنل نارم کے مطابق غلط ہے. لیکن کچھ آئیڈیاز لے کر کے, سچائی کے مشن لے کر کے, پیسفل طریقے سے آپ جائیں کہیں اور اس کو وہاں پریس کریں تو کیا ہوگا, وہ سمجھیں کہ اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں مجھے, میرا مائنڈ جو ہے رائٹ ٹریک پر آ گیا, دوسروں کا مائنڈ رائٹ ٹریک پر نہیں تھا. دوسرے لوگ بھاگ رہے تھے اس پر ہیٹ فل ٹریک پر, میرا مائنڈ رائٹ ٹریک پر آ گیا. تو پھر دوسرا فائدہ کیا ہوا, انالیسس کی پاور مجھے مل گئی. لیکن ہیٹ فل ذہن جو ہوگا, جو ہیٹ میں جیتا ہوگا, وہ کبھی بھی صحیح ڈھنگ پر انالیسس نہیں کر سکتا. جب بھی آدمی رائٹ تھنکنگ سے ہٹے گا وہ رائٹ انالیسس کھو دے گا. تو باتیں جانے کیسے, وہ وزڈم آئی کہاں سے اس کو؟ تو اب دیکھیں کیا ہوا کہ فرسٹ اسٹیج پر ہم نے یہ ڈسکور کیا کہ اس آتھر نے اگر یہ لکھا ہے, مغل کو انویڈر بتایا ہے, تو صحیح لکھا ہوا, جسٹس یہی کہ ہم اس کو کہیں کہ صحیح لکھا ہوا, کیونکہ ایکچولی وہ انویڈر تو تھے ہی, وہ کیونکہ آرمی لے کر آیا تھا بابر, اور راجاؤں سے لڑائی کی اس نے, راجاؤں سے لڑ کر کے آپ اپنا پولیٹیکل پاور اسٹیبلش کیا. یعنی ہندو راجاؤں جو ٹکراؤ اس کا ہوا, وہ دعوت کے فیلڈ میں نہیں ہوا, पीसफुल दावर नहीं किया उनके राजाओं के ऊपर उसने, बल्कि अपनी आर्मी लेकर उनको अटैक किया, उनको मारा काटा, उनकी आर्मी को थोड़ा थोड़ा ऑक्यूपाई कर लिया। तो पहली चीज जो मैंने डिस्कवर की वो ये है कि आथर ने ये सही लिखा है कि मुगल्स वेर इन्वेडर। अब देखिए दूसरी बात, जब मेरा माइंड राइट ट्रैक पर आ गया, दूसरा फायदा मुझे क्या मिला, एनालिसिस करने की पावर मेरे अंदर आ गई। एनालिसिस, एनालिसिस क्या चीज है, एनालिसिस का सबसे बड़ा जो वो है सबसे बड़ा फॉर्मूला वो है कंपैरिजन। इन कंपैरिजन दैट वी अंडरस्टैंड, सबसे सुपर फॉर्मूला है ये एनालिसिस का। तो अब हमने क्या किया कि कैसे एनालिसिस किया, हमने कहा कि देखिए इंडिया में एक तरफ ये लोग आए बाबा जैसे लोग जो जिनका जो कंसर्न था एक इंडिया में पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश करें अपना, और दूसरी तरफ इसी इंडिया में बाहर से सूफी लोग आए, जैसे ख्वाजा अजमेरी आए बाहर से आए। तो ये सूफी लोग मोस्टली ईरान से आए थे, तो बाहर से इंडिया में एक तो इंटर हुए रूलर्स और दूसरी तरफ बाहर से इंडिया में इंटर हुए सूफी। अब मैंने देखा कि कोई हिंदू सूफियों से नफरत नहीं करता और सारे हिंदू नफरत करते हैं रूलर्स। जिस हिंदू से मिलिए, जिस हिंदू इसकार की बुक पढ़िए, तो आप पाएंगे कि हिंदुओं को या हिंदू स्कॉलर्स को बाहर से आने वाले मुस्लिम रूलर से तो हेट करते हैं वो, लेकिन बाहर से हमारे मुस्लिम सूफी से वो हेट नहीं करते। अब यहां मुझे एक क्लू मिला, राइट थिंकिंग के वजह से मुझे एक क्लू मिला। तो मैंने सोचा कि वो भी मुस्लिम थे, वो भी मुस्लिम थे, मुस्लिम सूफी मुस्लिम थे, मुस्लिम रूलर से मुस्लिम थे। तो व्हाई दिस डिफरेंस, व्हाई हिंदू माइंड डिफरेंशिएट्स बिटवीन द टू। यह एनालिसिस, इसका नाम एनालिसिस है। एनालिसिस करने के लिए आपको अपने को बचाना पड़ता है। जब अपने को बचाएंगे आप हेट से, रिवेंज से, नेगेटिव थॉट से, तभी आप एनालिसिस कर पाएंगे। वरना झूठे एनालिसिस करेंगे, आपका एनालिसिस अटपटा रहेगा, वो सही नहीं होगा। अब मैंने जब एनालिसिस किया और कंपेयर किया मुस्लिम सूफी का मुस्लिम रूलर से, तो पता क्या चला, पता ये चला कि मुस्लिम रूलर्स जो है वायलेंस के, यानी वायलेंस लेकर आए, सोर्ड लेकर आए, मुस्लिम रूलर्स सोर्ड लेकर आए तलवार, और मुस्लिम सूफी लव लेकर आए प्यार। मुस्लिम रूलर्स तलवार लेकर आए, मुस्लिम सूफी प्यार लेकर आए। अब एक मुस्लिम सूफी का वो है, इसे पता चलता है कि सूफियों का सूफी कल्चर किस चीज का नाम है। उन्होंने कहा कि माँ किससे सिकंदर व दारा नखादैम अज माँ बजुज हिकायत मेहरो वफा बपुस। ये एक सूफी का है, मुस्लिम सूफी। इसका मतलब ये है कि वी डोंट नो द स्टोरीज ऑफ किंग्स एंड जनरल्स, वी डोंट नो द स्टोरी ऑफ किंग्स एंड जनरल्स, वी नो ओनली द स्टोरीज ऑफ लव एंड कंपैशन। We know only the stories of love and compassion. This was the difference between the two. ये मैंने डिस्कवर किया, क्योंकि मैंने अपने माइंड को हेट से बचाया, अपने माइंड को अनबास थिंकिंग से बचाया, तब मैं एनालिसिस कर सका और ये जान सका क्या वजह है कि सारे हिंदू जो हैं हेट करते हैं मुस्लिम रूलर्स से, वही हिंदू बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं मुस्लिम सूफी के बारे में। तो कोई चीज यही है कि वो ले आए, वो तलवार लेकर इंडिया में घुसे और मुस्लिम सूफी प्यार लेकर इंडिया में। अब देखिए इससे एक और बहुत बड़ी चीज मुझे डिस्कवर हुई, बहुत ही बड़ी चीज जो मेरी सक्सेस का वो है राज, वो ये क्या कि मैंने ये सोचा, मैं एनालिसिस करते करते यहां पहुंचा मैं, कि अगर मैं अलग कर दूं मुस्लिम किंग को इस्लाम से, अलग कर दूं, अभी सारे मुसलमान क्या है मुस्लिम किंग को इस्लामिक हिस्ट्री का पार्ट समझे हुए हैं, जो भी बुक लिखी जाती है मुसलमानों की उसका नाम होता है इस्लामिक हिस्ट्री, और भी सब किससे रहते हैं इन बादशाहों के, हमारे पास भी खुद यहाँ पर बुक है कि टाइटल रहेगा इस्लामिक तारीख इस्लामिक हिस्ट्री, और बातें किसकी रहेंगी, ये रूलर्स की बात है कि रूलर्स जो है वो इस्लाम का पार्ट बन गए, रूलर्स जो है मुस्लिम रूलर्स, मुस्लिम रूलर्स बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, अब इस्लाम तो अब जाहिर है हिंदू का समझेगा कि इस्लाम यही है, जब हमने मुस्लिम रूलर्स को इस्लाम का इस्लामिक हिस्ट्री का पार्ट बनाकर दिखाया तो जाहिर है हिंदू ये समझेगा कि ये जो है ये रूलर्स का जो फिनोमेना है वो इस्लाम का फिनोमेना है, तो हमने दोनों को अलग कर दिया, इस्लाम को अलग मुस्लिम रूलर्स को अलग, हमने ये फार्मूला बनाया, ये हम कहते थे कि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन इस्लाम एंड रूलर्स, अब मैं आपको किस्सा बताता हूँ बहुत सी किस्म की, एक किस्सा यहाँ पर दिल्ली से कट्टर हिंदुओं के दो पर्चे निकलते हैं, तो कट्टर हिंदू हैं, इंग्लिश में ऑर्गेनाइजर और हिंदी में पांच जन, बहुत ही वेल नोन पर्चे हैं ये कट्टर हिंदुओं का है, इंग्लिश में ऑर्गेनाइजर वीकली और हिंदी में पांच जन वीकली, दोनों दिल्ली से निकलते हैं, दोनों का ऑफिस एक ही जगह है, तो दोनों ने मिल करके एक मीटिंग रखी, हमको वहां बुलाया एज ए स्पीकर, उन्हीं के ऑफिस में, बहुत बड़ी बिल्डिंग है उनकी, उन्हीं के ऑफिस में ये मीटिंग रखी गई, तो ऑर्गेनाइजर्स का पूरा स्टाफ, पांच जन का पूरा स्टाफ और दिल्ली के और भी कट्टर हिंदू वहां पर मौजूद थे, अब हमको बुलाया उन्होंने वहां, अब क्या हुआ उनका जो बोलने वाला आदमी था वो बोला धूम से, और औरंगजेब को लिया उसने, औरंगजेब जो था मुस्लिम रूलर था, औरंगजेब ने हिंदुओं पर जुल्म किया, औरंगजेब ने जिजिया लगाया हिंदुओं के ऊपर, औरंगजेब ने लोगों की जनेऊ तोड़वाया, औरंगजेब ने वो उनको कत्ल करवाया, वो क्या नाम था उनका शिवाजी को, और यह है वो है सर। अब देखिए जब मैं खड़ा हुआ एक मिनट में खत्म सारा उनका एंगर खत्म, ये मैंने कहा भाई औरंगजेब जो है वो एक डायनास्टी का आदमी था, मुगल डायनास्टी, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम एक अलग चीज है, मुगल डायनास्टी अलग चीज है, इस्लाम अलग चीज है, मुगल डायनास्टी अलग चीज है, और फिर मैंने उसको डिटेल में बताया कि इस्लाम जो है उसको आप जानना है तो आप कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए, प्रॉफिट की लाइफ को पढ़िए, वो है सोर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की टेक्स्ट बुक्स है उसको पढ़िए, और औरंगजेब तो एक डायनास्टी थी, उसको रिप्रेजेंट करता था, मुगल डायनास्टी का नुमाइंदा था वो। तो आपको औरंगजेब को लेकर के जो आप स्टडी करते हैं वो मुगल डायनास्टी की स्टडी होती है, वो इस्लाम की स्टडी नहीं होती है वो। और फिर इस्लाम की मैंने जो पीसफुल टीचिंग है वो बताई लोगों को, इस सारे के सारे जो है वो एकदम पॉजिटिव हो गए सब के सब। उनका अगर इस्लाम यही है तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए कि ये इस्लाम के बारे में हमें एक दावत, इस्लामिक दावा जो है, इस्लामिक दावा के बारे में हमें क्या सुपर फार्मूला मिला, सुपर फार्मूला, सक्सेसफुल दावा वर्क का सुपर फार्मूला, सक्सेसफुल दावा वर्क का सुपर फार्मूला। वो क्या था? वो ये था कि पॉलिटिकल रूलर्स को इस्लाम से अलग कर दो, यानी उनको बता दो कि ये मुगल डायनेस्टी है, ये तातारी डायनेस्टी है, ये उस्मानी डायनेस्टी है, सिर्फ यही, यानी बाइफरकेशन दोनों को अलग कर देना। इस्लाम एक रिलीजन है जो बेस करता है सीक्रेट बुक पर, और रूलर जो थे वो किसी डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते थे, वो एक अलग चीज है। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन इस्लाम एंड दोज डायनेस्टीज। अगर आपको मुगल डायनेस्टी क्या थी उसको समझना है तो हिस्ट्री पढ़िए उनको, अगर आपको ये जानना है कि इस्लाम क्या है तो आपको कुरान पढ़िए, आप हदीस पढ़िए, प्रॉफिट को पढ़िए। एकदम जो है जो क्लाउड छट गया, सब पॉजिटिव हो गए। यह है सक्सेसफुल दावा वर्क का सुपर फार्मूला कि अपने को हेट से खाली कर लीजिए, अपने को बायस थिंकिंग से खाली कर लीजिए, अपने अंदर राइट थिंकिंग पैदा कीजिए। और ये कब आता है? जब आपके अंदर फियर ऑफ गॉड हो। अब मैंने आपको एक जर्नी बताई अपनी, इंटेलेक्चुअल जर्नी किस तरह शुरू हुई प्रोफेसर मुजीब के रिमार्क से और कहां पहुंची। हमारी इंटेलेक्चुअल जर्नी प्रोफेसर मुजीब के रिमार्क से पहुंची, प्रोफेसर मुजीब के नेगेटिव रिमार्क शुरू हुई और पॉजिटिव रिजल्ट उसका निकला है। आप गौर कीजिए, प्रोफेसर मुजीब के एक नेगेटिव रिमार्क से हमारी जर्नी शुरू होती है और दूसरे तमाम लोगों को ये जर्नी कहां पहुंचाती है। सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस रिमार्क को फेस किया, मतलब प्रोफेसर मुजीब के दिमाग से नहीं, इधर उधर सबने ये बातें कही। तो उन लोगों की इंटेलेक्चुअल जर्नी भी शुरू यहीं से हुई, हमारी भी शुरू वहीं से हुई, लेकिन उन लोगों का मिला हेट और रिवेंज और नफरत, बड़े खराब लोग हैं, बहुत इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। यानी उनकी जर्नी हेट से शुरू हुई, हेट पर खत्म हुई। सारे मुस्लिम स्कॉलर जो हैं, उनकी जर्नी हेट से शुरू हुई और फिर हेट ही पर खत्म हुई। हमारी जर्नी जो है एक नेगेटिव रिमार्क शुरू हुई और वो पॉजिटिव रिजल्ट पर खत्म हुई। ये सब कुछ रात किस बात का है? रसूल हिकमत मखाफतुल्लाह, फियर ऑफ गॉड इज द सोर्स ऑफ विजडम। क्या भाई कुछ मिला आप लोगों को? नहीं मिला है? कुछ मिला?